मुख्य समाचारों में बाल रोग विशेषज्ञों द्वारा महामारी से उबरने की योजनाओं में ऑस्ट्रेलियन बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान। एसीटी में भी कोरोना वायरस प्रतिबंधों में ढील और भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सांसदों के कथित आपराधिक रिकॉर्ड के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। फेडरल चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और विपक्षी नेता एंथनी एल्बनीसी सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहे हैं। दोनों नेताओं की नज़र लिंजियारी मतदाताओं पर है, जहां लगभग आधे मतदाता फर्स्ट नेशन यानी मूल निवासी हैं। इसे औपचारिक रूप से लिंजियारी के डिवीजन के रूप में जाना जाता है, जो नॉर्दर्न टेरिटरी में एक ऑस्ट्रेलियन चुनावी डिवीजन है और जो सोलोमन डिवीजन के बाहर के उस पूरे क्षेत्र को कवर करता है जिसमें डार्विन और आसपास के क्षेत्र आते हैं। एलिस स्प्रिंग में बोलते हुए श्री मॉरिसन ने रक्षा परियोजनाओं के लिए $282 मिलियन देने का वादा किया, जिसमें डार्विन में एक क्षेत्रीय रखरखाव केंद्र की स्थापना भी शामिल है। उन्होंने स्वदेशी नेतृत्व और गवर्नेंस के लिए एक फंडिंग को बढ़ाने का भी वादा किया, जिसमें ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस मेंटोरिंग एक्सपीरियंस के लिए $13.5 मिलियन शामिल है।
$21.9 मिलियन in new programs to support indigenous businesses and entrepreneurship and to raise up those young people who are coming through. There's around 13 million which is focused on developing the skills and giving them the hope and the opportunity of how they can progress their careers.
और डार्विन में बोलते हुए फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीसी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार चुनी जाती है तो पामर्स्टन में स्वदेशी ऑस्ट्रेलियन लोगों के लिए लक्षित स्वास्थ्य सुविधा के लिए वित्त पोषण में $11.6 मिलियन प्रदान करेगी। उन्होंने नॉर्दर्न टेरिटरी में स्वदेशी समुदायों के लिए फेडरल सरकार की प्रतिक्रिया की भी आलोचना करते हुए कहा कि वो टीके को प्रभावी ढंग से रोल आउट करने में विफल रही और पूरे क्षेत्र में कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए जाने चाहिए थे।
This is about a practical measure which is part of our commitment to close the gap and we need to support culturally sensitive delivery of services. This is an example of the importance of healthcare and the importance of delivering for First Nations people. We know that the gap is there. The gap's there in terms of all of the indicators when it comes to health.
क्वींसलैंड प्रीमियर एनेस्थीसिया पैलेशे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्कृति और जवाबदेही की एक स्वतंत्र समीक्षा का नेतृत्व करने के लिए एक पूर्व लेबर डोनर की नियुक्ति के अपने फैसले का बचाव कर रही हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीटर कोल्ड्रेक समीक्षा करेंगे। लेबर पार्टी के साथ उनका संबंध 3 दशक पुराना है। सुश्री पैलेशे का कहना है कि उनके दान के कारण जांच का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
Look, they might have been in the past, but let me say this. My understanding is that the LNP government also commissioned Peter Coldrake to do some work. He has been a former vice chancellor of QUT for 14 years. I have no doubt that he will treat this review seriously. And he will deliver key recommendations to government.
प्रोफेसर कोल्ड्रेक 6 प्रमुख क्षेत्रों को देखेंगे, जिसमें नैतिक निर्णय लेने और निष्पक्ष सलाह सुनिश्चित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की संस्कृति, अखंडता, निकायों के बीच बातचीत की प्रकृति और नैतिकता, और अखंडता ढांचे को रेखांकित करने वाले कानून शामिल हैं। फेडरल पर्यटन मंत्री डैन तिहन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक पूर्व महामारी के स्तर पर लौट आएंगे या ये संख्या इसके बहुत करीब होगी। सोमवार 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से टीका लगाए गए पर्यटकों, व्यापारिक यात्रियों और अन्य आगंतुकों के लिए खुल जाएगा। श्रीतिहन का कहना है कि नए पर्यटन अभियानों का उद्देश्य विदेशों में लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि ऑस्ट्रेलिया एक शीर्ष हॉलीडे डेस्टिनेशन बना रहे और यहाँ आना सुरक्षित है.
Every indication that I'm seeing is that there is very, very strong demand from overseas visitors to come back to Australia. What has happened throughout the pandemic is people have seen that the best way for them to travel is to travel regionally, to travel within their own country or go on very short journeys. So what we've got to do is make sure that they reimagine what tourism is all about, what visitation is all about.
वीजा धारक जिन्हें पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है उन्हें अभी भी ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए एक वैध यात्रा छूट की आवश्यकता होगी और वो राज्य और टेरिटरी संगरोध आवश्यकताओं के अधीन होंगे. फेडरल सरकार क्रूज उद्योग की सुरक्षित बहाली पर भी राज्यों और टेरिटरीज के साथ काम कर रही है. ACT आज शाम 6 बजे से अपने कई COVID-19 प्रतिबंधों में ढील दे रहा है. आतिथ्य स्थलों पर खड़े होकर खाने और पीने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है. कैनबरा के कैलवरी हॉस्पिटल में सोमवार से वैकल्पिक सर्जरी फिर से शुरू होगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संगरोध अवधि अब 7 दिन की होगी. सभी व्यवसायों में घनत्व की सीमा हटा दी जाएगी. मुख्यमंत्री एंड्रू बर्ग का कहना है कि हो सकता है कि कुछ लोग प्रतिबंधों में ढील के बावजूद सतर्क रहना चुनेंगे.
I think they're already reasonably comfortable. It will vary across the community. There'll be some people who will still rightly feel very cautious for reasons of their own personal health. They may be immunocompromised. They may have comorbidities, they may be more at risk than others. They'll make those personal judgments.
ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय COVID-19 रिकवरी योजना अपनाने की मांग बढ़ रही है. देश भर के बाल रोग विशेषज्ञ फेडरल सरकार से महामारी के दौरान बच्चों के भावात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास की कमी को दूर करने के लिए बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और भलाई की रणनीति स्थापित करने के लिए कह रहे हैं. रॉयल ऑस्ट्रेलेशियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने किड्स कोविड कैचअप अभियान शुरू किया है जो एक राष्ट्रीय कार्यबल की स्थापना की सिफारिश करता है. कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन विल्सन का कहना है,
The children of this country are our future. They desperately need to play catch up to where they were 2 to 3 years ago in terms of their mental health. We're also calling for a recovery plan that ensures that young people and families have a voice in shaping the recovery of this nation. We also believe that we need to address issues such as unhealthy diets that have arisen during the COVID pandemic.
भारत में सांसदों के कथित आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. NDTV के समाचार के अनुसार सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गैर आवश्यक थी. हम इस मामले को सिंगापुर के समक्ष उठा रहे हैं. सूत्रों ने यह भी बताया कि विदेश मंत्रालय की ओर से सिंगापुर के दूत को बुलाकर भारत के तीखे एतराज से अवगत कराया गया. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लूंग ने सिंगापुर की संसद में लोकतंत्र पर चर्चा के दौरान कहा था कि भारत में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा के आधे से अधिक सांसदों के खिलाफ रेप, हत्या जैसे आरोप सहित आपराधिक मामले लंबित हैं. हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनमें से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं. और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 72 सेंट और भारत के 54 रुपए के बराबर है. खेल समाचारों में ऑस्ट्रेलिया के माइकल मासी को पिछले साल के चैंपियनशिप के विवादास्पद समापन के बाद फार्मूला 1 रेस निदेशक के पद से हटा दिया गया है. मासी ने पिछले साल के अंत में अबूधाबी में रेसिंग के अंतिम चरण में कार सुरक्षा प्रक्रिया में बदलाव किया. उनके निर्णय ने प्रभावी रूप से विश्व खिताब रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपेन को मिला और इस प्रक्रिया में लुइस हैमिल्टन को रिकॉर्ड 8वें विश्व खिताब को खोने की कीमत चुकानी पड़ी. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में अधिकतम तापमान रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 21 डिग्री और वहां धूप रहेगी। एडिलेड में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। कैनबरा में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 26 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री। और डार्विन में एक दो बौछारें, तूफान की संभावना, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।